वेद ने घर पर शिवांशा से अंकुश से जुड़े उसके पास्ट के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिवांशा कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। वेद ने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया, हालांकि वो उससे नाराज जरूर हो गया था। वेद शिवांशा को रोहन के पास हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। रास्ते में ट्रैफिक जाम के फंसने पर शिवांशा खुद ब खुद वेद को सब कुछ बताने लगी थी। उसने काफी शॉर्ट में अपनी जिंदगी की कहानी वेद को बता दी थी। वेद अब जानना चाहता था कि क्या शिवांशा इस बात को जानती थी कि बचपन में अंकुश ने उसके साथ रेप किया था। काफी हिम्मत करके वेद ने इस बारे में पूछा तो शिवांशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। घबराहट के मारे उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। शिवांशा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? आपकी बातें बता रही हैं कि आपको कुछ पता चला है। शिवांशा को पैनिक करते देखकर वेद ने जल्दी से कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस जानना चाहता था कि उसने कहीं तुम्हारे बचपने का फायदा तो नहीं उठाया ना? तुम्हें कोई ऐसा मोमेंट याद आ रहा है जो तुम्हें थोड़ा फिशी लगा हो? शिवांशा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई थी। उसने अपने सिर को पकड़ रखा था। वो याद करने की कोशिश कर रही थी। उसे इस तरह स्ट्रगल करते देखकर वेद ने कहा, अगर याद नहीं है तो खुद को इतना प्रेशराइज मत करो, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। शिवांशा को तसल्ली देते हुए वेद को भी राहत महसूस हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, अंकुश जैसे घटिया आदमी पर यकीन किया ही नहीं जा सकता। वो मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। जो भी हो, बहुत ही घटिया झूठ बोला है उसने। हालांकि उसे शिवांशा के साथ कुछ करने का मौका ना मिला हो, लेकिन नीयत तो उसकी खराब ही थी। वेद को अंकुश की बातें फिलहाल झूठ ही लग रही थी। वेद अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी शिवांशा ने कहा, ठीक से कुछ याद तो नहीं आ रहा, पर मैंने आपको बताया था ना कि उनकी शादी थी। शादी के ठीक बाद वो तुरंत हनीमून के लिए नहीं जा पाए, लेकिन थोड़े टाइम बाद में वो घूमने के लिए गए थे और एक जगह पर जिद करके अंकुश मुझे अपने साथ लेकर गया था। गीतिका भाभी उससे बहुत नाराज भी हुई थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि छोटे मोटे कामों के लिए वो मुझे साथ लेकर जा रहे हैं। उस दौरान अचानक इमरजेंसी सिचुएशन के चलते गीतिका भाभी अपनी दोस्त के यहाँ चली गईं। जैसे ही शिवांशा ने बताया, वेद का दिल जोरों से धड़कने लगा था। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि अंकुश की बातें झूठी निकलें। शिवांशा ने आगे कहा, उस टाइम शायद मैं 12 साल की थी, मुझे कुछ याद नहीं है, पर इतना जरूर पता है कि जब हम वापस लौटे थे तब मेरी तबीयत बहुत खराब थी। 10-15 दिनों तक मेरे ऊपर बेहोशी छाई हुई रहती थी। मेरे ठीक होने पर अंकुश की मॉम ने मुझ पर बहुत गुस्सा भी किया था और भला बुरा कहती रहती थी। वेद के गुस्से में मुट्ठियां भीज गई थी। शिवांशा उसके चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस को देख रही थी। उसने वेद से घबराहट से पूछा, क्या हुआ? अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो हम गाड़ी के बाहर निकल जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ट्रैफिक इतनी आसानी से क्लियर होगा। मैं ठीक हूँ, वेद ने खुद को सामान्य करते हुए जवाब दिया। उसने एक नज़र शिवांशा के मासूम चेहरे की तरफ देखा, जो सच में अब तक अपने साथ हुए अन्याय से अनजान थी। क्या तुम्हें अपने दादा से नफरत नहीं होती क्योंकि उनकी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहन करना पड़ा? वेद ने शिवांशा की तरफ देखकर पूछा। उसे अब सच में शिवांशा पर दया आने लगी। उन्होंने जो भी किया था उसके बाद वो प्यार के लायक नहीं थे। जब मुझे उनका किया हुआ समझ में आया और उनकी वजह से हमें क्या कुछ झेलना पड़ा, इन सबका एहसास हुआ, तो सच में उनसे नफरत होने लगी। इतने सालों में मैंने कभी उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट उनके मरने की बात भी मुझे अंकुश ने बताई थी, शिवांशा ने बताया। अजीब बात है, तुम अपने दादा से इतनी नफरत करती हो तो फिर उन्हें अपना वेडिंग कार्ड भेजकर इतना इमोशनल लेटर लिखने की क्या जरूरत थी? वेद ने हैरानी जताते हुए पूछा। शिवांशा अगर वो लेटर नहीं लिखती तो शायद ही वेद को कभी उसके बारे में पता चलता। वेद की बात सुनकर शिवांशा भी चौंक गई थी। उसने तुरंत नामे सिर हिलाकर कहा, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने उन्हें कोई लेटर नहीं लिखा और मुझे तो पता तक नहीं कि वो कौन सी जेल में थे। तो फिर उनके पास वो लेटर कैसे पहुंचा? जब वो मरने वाला था तब उसने मुझे हॉस्पिटल में बुलाया था। इस बीच हवलदार ने मुझे तुम्हारी शादी का कार्ड और लेटर दिया, जिसके बाद ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चला था। अगर तुमने वो लेटर नहीं लिखा तो किसने लिखा होगा? वेद ने शिवांशा को सब बताया। कोई तीसरा ऐसा मौजूद था जो चाहता था कि वेद को शिवांशा के बारे में पता चले और इस खेल को एक नया ही रुख मिले। अब वो कौन था उसके बारे में वो दोनों ही नहीं जानते थे। वेद और शिवांशा दोनों हक्के बक्के एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तभी पीछे से गाड़ियों के हॉर्न की तेज आवाज आने लगी। ट्रैफिक क्लियर हो गया था। वेद और शिवांशा इतने खो गए थे कि उन्हें सामने की तरफ कुछ दिखाई ही नहीं दिया। हॉर्न की आवाज सुनकर उनका ध्यान टूटा तो वेद ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और फिर उसे आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन दोनों ने ही इस घटना के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था और वो था कि आखिर कौन था वो शख्स जिसने शिवांशा के नाम से देवराज को लेटर लिखा था। वेद ने अपने मन में कहा, मैं पहले से ही जानता था कि मम्मी पापा की मौत किसी साजिश के तहत हुई थी, लेकिन सब कुछ इतना भी सीधा और सरल नहीं था जितनी आसानी से सुलझा दिया गया था। देवराज ने कभी अपना मुंह नहीं खोला था और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि उसे मेरे सामने सच ना बोलना पड़े। आखिर कौन है वो शख्स जो उनकी हत्या के पीछे का असली जिम्मेदार है? वहीं शिवांशा के दिमाग में भी कुछ ऐसे ही ख्याल चल रहे थे। उसने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, मैंने दादू से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, ना मुझे उनका चेहरा याद है और ना ही उनकी आवाज़। जो भी हो, जिसने भी वो लेटर लिखा वो यही चाहता था कि वेद को मेरे बारे में पता चले। उसने ऐसा क्यों किया होगा? जरूर मुझे मारना चाहता था। सामने नहीं आ सकता था तो देवराज के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलानी चाहिए। कैसे पता लगाऊं ये किसने किया होगा? उन दोनों की उधेड़बुन में हॉस्पिटल आ चुका था। वेद गाड़ी से बाहर आया और उसने शिवांशा को भी उतरने का इशारा किया। कुछ ही देर में वो ऊपर रोहन के पास पहुंच चुके थे। प्रतीक उसका पूरा ख्याल रख रहा था। शिवांशा को देखते ही प्रतीक ने कहा, अभी बस थोड़ी देर पहले ही सोया था, डोंट वरी, मैंने उसे खाना खिला दिया था। थैंक यू सो मच भैया, शिवांशा के मुंह से निकला, जिसे सुनकर वेद और प्रतीक दोनों ही उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे थे। शिवांशा ने उनके चेहरे की तरफ ध्यान नहीं दिया और फिर जल्दी से रोहन के कमरे में चली गई थी। उसके जाते ही प्रतीक ने वेद से कहा, भाई ये क्या कर रही है, मुझे भैया क्यों बोल रही है वो? इसके चक्कर में मैं इमोशनली कंफ्यूज होकर रह जाऊंगा। हाँ, ये कई बार ऐसे रिएक्ट करती है जैसे सच में मेरी पत्नी हो, बेवकूफ लड़की, वेद ने सिर हिलाकर जवाब दिया। प्रतीक को लगा कि उसकी बातें वेद को हर्ट ना कर दे, क्योंकि गलती से भी सही उसने देवराज की पोती के साथ एक रिश्ता बना लिया था। ये सोचकर उसने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, आपकी अंकुश से मुलाकात हुई थी, कुछ बताया उसने? अंकुश का जिक्र आते ही वेद के चेहरे के भाव फिर से सर्द होने लगे थे। गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियां बांध ली थी। उसने तेज सांस लेते हुए कहा, वो एक नहायत ही घटिया इंसान है, इनफैक्ट उसके लिए इंसान शब्द कहना ही गलत होगा। वेद की बातों से प्रतीक को समझ आ गया था कि वेद इतना गुस्सा क्यों है। उसने सिर हिलाकर कहा, इसका मतलब उसने सब कुछ जानबूझकर करवाया था, मुझे पहले ही शक था।
उसने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में मैं और तुम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अब तक मुझे लगता था कि वो सिर्फ शिवांशा को मोलेस्ट कर रहा है। उसकी नीयत शिवांशा को लेकर हमेशा से ही खराब रही है, और उसने बचपन में उसके साथ बोलते हुए वेद रुक गया था। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। वेद के लिए इतना स्ट्रेस लेना सही नहीं था। प्रतीत जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप शांत हो जाइए भाई, हम उसके किए की सज़ा उसे देकर रहेंगे। लेकिन वो सब करने से उसके जख्म तो नहीं भर जाएंगे ना, वो बस 12 साल की थी, उसे तो कुछ याद भी नहीं है, वेद ने कांपती आवाज़ में कहा। शिवांशा के सामने उसने अपने जज्बातों को अच्छे से काबू किया था, वरना उसके अंदर भी एक तूफान चल रहा था। पूरी फैमिली में प्रतीक इकलौता इंसान था जिसके सामने वेद अपने दुख, दर्द, तकलीफ बिना किसी मुखौटे के बताता था। वेद को इस तरह तकलीफ में देखकर प्रतीक ने उसे जल्दी से गले लगा लिया। वेद बहुत कम मौकों पर इमोशनल होता था। प्रतीक ने उसे ज्यादातर अपने मम्मी पापा की याद में ही तड़पते हुए देखा था। बाकी उसने अपने भाई बहनों के मामले में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी कि उन्हें तकलीफ हो और वेद को दुख पहुँचे। आज वो इतना परेशान था तो सिर्फ शिवांशा का सोचकर। ऐसा नहीं था कि वेद के दिल में शिवांशा के लिए फीलिंग्स ग्रो होने लगी थी। उसकी जगह कोई और लड़की होती तब भी वेद को ऐसा ही महसूस होता। प्रतीक ने वेद को सहलाते हुए कहा, बच्ची ने बहुत कुछ सहा है भाई, ये उस कमीने देवराज की वजह से हो रहा है। देवराज का जिक्र आते ही वेद जल्दी से प्रतीक से अलग हो गया था। उसने तुरंत प्रतीक को उसे लेटर वाली बात को बताते हुए कहा, प्रतीक, शिवांशा ने बताया कि उसने देवराज को कोई लेटर नहीं लिखा था, वो तो उसके जेल में जाने के बाद कभी उससे मिली तक नहीं थी। वो देवराज से नफरत करती है, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा तो फिर वो लेटर कौन लिख सकता है? यही तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर देवराज किसके इशारों पर चल रहा था। वो जो भी हो आज भी जिंदा है, अगर उसके इरादे अभी भी आपको नुकसान पहुंचाने के हैं तो चौहान फैमिली खतरे में है, प्रतीक ने गंभीर आवाज़ में कहा। वेद ने उसकी बात पर सिर हिलाया। उसने जवाब में कहा, हम पता लगा लेंगे और हमें लगाना ही होगा। प्रतीक के साथ सब कुछ डिस्कस करने के बाद वेद कमरे के अंदर गया। उसने देखा शिवांशा रोहन के साथ सो रही थी। उसने रोहन को अपने सीने से लगा रखा था और धीरे धीरे उसके बालों को सहला रही थी। शिवांशा को नींद नहीं आई थी लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। वेद ने बिल्कुल सही कहा था, जब तक शिवांशा अपनी तकलीफ किसी को बताएगी नहीं तब तक वो इस दर्द के बोझ तले हमेशा दबी रहेगी। आज वेद को सब कुछ बताने के बाद शिवांशा को काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। शिवांशा ने मन ही मन कहा, उन्हें मुझसे हमदर्दी क्यों हो रही है? आज तक मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा था सिवाय अरमान भाई के। वेद को तो मुझसे नफरत है, फिर वो मुझे सिंपथी क्यों जता रहे हैं? उन्होंने ये क्यों कहा कि मुझे अंकुश से जुड़ा हुआ कोई अजीब लम्हा याद है या नहीं? अंकुश को वेद ने अरेस्ट करवाया था तो क्या उन्हें कुछ पता चला है जिसके बारे में वो मुझसे पूछ रहे हैं? पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? शिवांशा आंखें बंद करके कसमसा रही थी। वेद ने गहरी सांस ली और उसके पास आकर सख्त आवाज में कहा, तुम एक मिनट के लिए भी खुद के दिमाग को रेस्ट नहीं दे सकती क्या? जब देखो उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो। वेद की आवाज़ सुनकर शिवांशा जल्दी से हड़बड़ा कर उठी। उसने जल्दी से नामे सिर हिलाकर कहा, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोच रही थी, रियली? वेद भौंय चढ़ाकर बोला। वेद ने उसकी चोरी पकड़ ली थी, शिवांशा ने नजरें नीचे की और धीमी आवाज में पूछा, आपको कैसे पता चला? कुछ चीज बताने की जरूरत नहीं होती है, बस देखकर ही महसूस हो जाती है, वेद ने जवाब दिया। जब भी वेद अपनी इंटेंस वॉइस में शिवांशा की परवाह जताते हुए कुछ कहता था तो उसकी दिल की धड़कनें तेजी से शोर करने लगती थी। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिवांशा बिना पलके झपकाए वेद की तरफ एकटक देख रही थी। उसका इस तरह एकटक वेद को देखना वेद को इनसिक्योर कर देता था। शिवांशा को उसके ख्यालों से बाहर निकालने के लिए वेद ने खांसते में तेज आवाज में कहा, मैं यहाँ ज्यादा नहीं आ पाऊंगा, प्रतीक यहीं पर रहेगा, तुम जब तक चाहो रह सकती हो, तुम्हारा सामान मैंने रखवा दिया है और अलग से कमरा भी बुक है। इसी के साथ शिवांशा को होश आया और उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली थी। उसने वेद की बात पर हामी भरते हुए सिर हिलाया। वेद तुरंत उसके सामने से हट गया था तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में अंकुश की चीखें गूंज रही थी। जब से इंस्पेक्टर को वेद की तरफ से ऑर्डर मिला था तब से वो अंकुश पर थर्ड डिग्री टॉर्चर ट्राई कर रहा था। असल सच तो ये था कि उसकी फैक्ट्री में ड्रग्स वेद ने ही रखवाए थे और वहाँ ट्रैफिकिंग के लिए कोई बच्चे नहीं मिले थे। इनफैक्ट कुछ पेपर्स मिले थे जो फेक थे और वेद ने रखवाए थे। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम ये सब उसे वेद सिंह चौहान के कहने पर कर रहे हो, लेकिन जिस दिन मैं बाहर आया एक एक को जमीन में गाड़ दूंगा। जिस दिन मैंने यहाँ से बाहर कदम रखा वो तुम्हारे लिए और उसे वेद सिंह चौहान की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और सबसे पहले सबक उसकी पत्नी को सिखाऊंगा। हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरे खिलाफ जाने की? औकात भूल गई है क्या वो अपनी? दर्द में भी अंकुश उन्हें धमकियां देने से बाज नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ गीतिका और लीला रात के अंधेरे में अंकुश से मिलने के लिए आई थी। जब उन्होंने अंकुश की बात सुनी तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उन्हें यही लग रहा था कि अंकुश के साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे शिवांशा का हाथ है। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। आई नो ये बाकी कहानियों की तरह नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं अलग तरह का प्रोजेक्ट ट्राई करूंगी। जरूरी नहीं होता कि किसी से प्यार हो तो हमेशा उसके चिपक के रहो, कई बार दूर रहकर भी केयर की जा सकती है। जैसे वेद है, शिवांशा को अनकंफर्टेबल फील ना हो इसलिए वो उसे टच तक नहीं करता। फिलहाल कोई प्यार वाली फीलिंग नहीं है, देखते हैं कब होगा। चलिए आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं।